स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, हमें विश्वास है कि हमारे इस बाइबल अध्ययन से आपको अत्यधिक लाभ मिल रहा है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से व्यवस्था विवरण नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक आपके आत्मिक जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हो और सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आज हमारे कुछ नए मित्र भी हैं जो अपने रेडियो को खोल करके बैठे हैं ताकि वे भी आज के वचन की संगति में आ सकें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 16 अध्याय का अध्ययन किया था और उसमें हमने देखा कि फसह का पर्व, पेंतिकोस्त का पर्व और तंबू का पर्व, जो तीन प्रकार के पर्व थे और उसमें पुरुषों का होना आवश्यक था, अर्थात उन्हें यरूशलेम में आना पड़ता था और हर एक त्योहारों में अर्थात पर्वों में उन्हें शामिल होना पड़ता था। आज हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और अध्याय 17 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, लेकिन इसके पूर्व आइए हम सब परमेश्वर से सहायता मांगे और आज के अध्ययन के लिए प्रार्थना करें। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें फिर से एक बार ऐसा समय दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय हमारे श्रोता भाई बहन जो आपके वचन को सीखने के लिए बैठे हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे, ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो ये वचन हमारे हृदयों में कार्य कर सके। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमारे आज का अध्ययन का विषय है इसराइलियों की मूर्ति पूजा और अधिकारियों की अनाज्ञाकारिता के लिए मुख्य दंड और राजाओं के विषय में व्यवस्था। मित्रों, 17 और 18 अध्याय में हम ऐसे विभाग की ओर आते हैं जो ऐसे नियमों के बारे में हमें बताते हैं जिससे राजाओं, याजकों और भविष्यवक्ताओं को नियंत्रण में किया जा सके। इसराइल के देश में जिस धर्म तंत्र को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ठहराया है, यही तीन मुख्य बातें हैं जो उनके लोगों के लिए हैं। परमेश्वर ने प्रत्येक कार्य के लिए उन्हें नियम दिए। आइए हम देखते हैं, भेंट हमेशा दोष रहित होना चाहिए। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए कोई बैल व भेड़ बकरी बलि न करना जिसमें दोष व किसी प्रकार की खोट हो, क्योंकि ऐसा करना तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप घृणित है। मित्रों, ध्यान दीजिए कि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है कि हर एक चीज का पहला उठा परमेश्वर का है। इसके अलावा जितने भी भेंट परमेश्वर के सम्मुख लाई जाती है वे दोष रहित हो अर्थात निष्कलंक होनी चाहिए। यदि आप पुराने नियम की अंतिम पुस्तक को पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि मलाकी लोगों के खिलाफ उन दंडों की घोषणा करता है जो परमेश्वर उन लोगों को देने पर है। वे पाप जिनके कारण परमेश्वर को क्रोध लोगों पर उतरता है। सबसे पहला आरोप यह था कि लोग परमेश्वर के लिए बलि करने को बीमार जानवर या पशु ले आते हैं। मान लीजिए एक किसान के पास बहुत ही अच्छी नस्ल की एक पशु है या बैल है और वह उन्हें अपने लिए रख लेता है, और एक दिन जब वह अपने खलिहान में पहुंचता है तो पाता है कि वह पशु बीमार है, तो वह अपने काम करने वाले से यूं कहता है, अरे लड़कों, जल्दी करो, अब हम इस बैल को गाड़ी में डालकर पवित्र मंदिर में ले जाएंगे ताकि हम यह पशु परमेश्वर के लिए बलि कर दें। पड़ोसी कहेंगे, मेरे प्रभु, देखो उस व्यक्ति को कि वह कितना उदारवादी है, वह परमेश्वर के लिए कितना कीमती पशु को भेंट के स्वरूप में दे रहा है। परंतु परमेश्वर जो मन को जानता है वह कहता है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार की भेंटें वास्तव में बेकार की हैं। मेरे मित्रों, क्या आप इस बात को जानते हैं कि यदि बहुत से विश्वासियों की जांच की जाती तो जिस तरीके से हम परमेश्वर के साथ में व्यापार करते हैं, हमें गिरफ्तार करके अवश्य ही बंदी गृह में डाल दिया जाता। यदि हम संसार के लोगों के साथ या फिर किसी व्यक्ति विशेष के साथ इस प्रकार के कारोबार को करें तो हम जेल में डाल दिए जाएंगे। हम में से हर एक को अपनी अपनी जांच करनी चाहिए। हम अपने आर्थिक मामलों में या आर्थिक स्थिति में परमेश्वर के साथ कितने ईमानदार हैं। मेरे मित्रों, आप गलत न समझें, परमेश्वर गरीब नहीं है। वह सारी दुनिया, सारे सोने और चांदी का स्वामी है। हजारों और लाखों पहाड़ियों में पाए जाने वाले जितने भी जंगली जानवर हैं, उन सब का मालिक वही है। उसे हमारे एक बीमार गाय या बैल की आवश्यकता नहीं है। असल में हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, तो फिर हमसे भेंट की मांग वह क्यों करता है? वह हमें ऐसा करने की अनुमति इसलिए देता है कि यह हमारे प्राण के लिए लाभदायक है। मेरे मित्रों, हम कभी भी आशीषित नहीं होते जब हम अपने परमेश्वर के सामने भिखारी के समान और कंजूस बनकर आते हैं। उदाहरण के लिए, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम परमेश्वर के कार्यों के लिए क्या दे रहे हैं। आज की तारीख में बहुत से बड़े बड़े लोग सेवा संस्थानों के लिए मात्र अपने बोझ को दूर करते हैं। वे मिशन या सेवकाई के लिए अपने पुराने धुराने कपड़े दे दिया करते हैं। परंतु मेरे मित्रों, परमेश्वर को हमारा बचा कुचा माल नहीं चाहिए, उसे हमारी ओर से उत्तम भाग चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसराइलियों के मूर्ति पूजकों के लिए मृत्युदंड। मेरे मित्रों, यह मूर्ति पूजा करने वालों के लिए एक सटीक नियम है। इस उदाहरण या किसी दूसरे उदाहरण से जो हमें दिए गए हैं, और मैं सोचता हूं कि 10 आज्ञाओं में से किसी भी आज्ञा को तोड़ने पर उसका दंड मृत्यु ही था। आज की तारीख में हम अत्यधिक प्रिय कृपा पात्र हो गए हैं कि हम इस मृत्यु दंड से बच गए हैं। परंतु इसके बावजूद भी रुचिकर बात तो यह है कि आज हमारा समाज हर दौर की तुलना में सबसे ज्यादा कानून का उल्लंघन करने वाला है। क्या यह बात आपको सोचने पर मजबूर नहीं कर देती कि वास्तव में परमेश्वर ठीक है? मेरे मित्रों, मूर्ति पूजकों के लिए दंड मृत्यु था। और आप ध्यान दें कि उसने मूर्ति पूजा का जिक्र किया था जो कि वर्तमान संस्कृति के हिसाब से बहुत ही सामान्य है। यूनानी मतानुसार और पूर्वी देशों के अनुसार उनके पास बहुत से देवी और देवता हैं जो सूर्य, चांद और सितारों से भी संबंधित हैं। अपोलो सूर्य देवता के रूप में माना जाता था और डायना यूनानी मत के अनुसार चांद की देवी है। वे सृष्टिकर्ता के बजाय सृष्टि की पूजा और अर्चना करते हैं। इन सारी बातों की शुरुआत कहाँ हुई? मैं विश्वास करता हूँ कि इसका आरंभ बाबेल की मीनार के साथ हुआ था। बाबेल की मीनार असल में उन सारे लोगों के लिए दौड़ शुरू करने वाला स्थान है जो परमेश्वर के खिलाफ अर्थात विरोध में थे। क्यों? परमेश्वर ने बाढ़ को भेजा था और अब वे सूर्य की पूजा कर रहे थे, क्योंकि सूरज कभी भी बाढ़ को नहीं भेजता। सबसे रुचिदायक बात तो यह है कि वे यह नहीं जानते थे कि सूरज की वजह से ही पानी के स्तर में बढ़ोतरी होती है, बादल आसमान में फिरते हैं और जिसकी वजह से बरसात होती है। उस समय की मूर्ति पूजा उचित नहीं थी और न ही उस समय पर विज्ञान था, और शायद हमारे वर्तमान के विज्ञान के पास भी किसी भी बात के लिए अंतिम वाक्य न हो। मेरे मित्रों, बहुत से महान लोग आज सोचते हैं कि मनुष्य का ज्ञान और बुद्धि सर्वोत्तम है। हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी बहुत सी बात गलत साबित हो चुकी है। उन्होंने सूरज, चांद और अन्य सितारों की इसलिए पूजा की क्योंकि उनका मानना था कि ये सारे ग्रह और उपग्रह मनुष्यों के लिए मित्र हैं। उन्होंने इन ग्रहों को बनाने वाले परमेश्वर की उपासना करने के बजाय इन ग्रहों की पूजा की। परमेश्वर का उनके लिए यह दंड है। हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 6 पद में, जहां लिखा है, जो प्राण दंड के योग्य ठहरे वह एक ही की साक्षी से ना मार डाला जाए, किंतु दो व तीन मनुष्यों की साक्षी से मार डाला जाए। मेरे मित्रों, आप ध्यान दें कि परमेश्वर मासूम लोगों को बचाता है। यह केवल कुछ कम कर देना ही नहीं है। मनुष्य अपने किसी भी अधिकारी के पास में नहीं जा सकता था, क्योंकि उसका पड़ोसी सूर्य देवता या अस्थारोस्त्र, किसी बेबीलोन या बाबुल के देवता या बाल देवता या किसी और झूठे देवता की पूजा करें। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी आरोप लगाने के लिए दो या तीन गवाहों का होना जरूरी था। हमारे समाज में एक व्यक्ति की गवाही किसी इंसान या किसी मनुष्य को मौत के घाट उतार सकता है। मैं भी व्यक्तिगत रूप में समझता हूं कि इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परमेश्वर हमेशा दो या तीन गवाहों को चाहता है। परमेश्वर अपने सारे मामलों में बहुत ही स्पष्ट है, ताकि हम मनुष्य इस बात को समझ जाएं। आइए अब हम आगे देखें अधिकारियों के प्रति आज्ञाकारिता। मेरे मित्रों, धर्म तंत्र में उन्हें अपने मुद्दों को परमेश्वर द्वारा ठहराए गए याजक या न्यायियों के सामने ले जाना था, अपने मुद्दों अर्थात अपने विषयों को। धर्म तंत्र के अनुसार उनके पास कभी कोई राजा नहीं था। हम जानते हैं कि बाद में उन्होंने राजा की मांग की और परमेश्वर ने उनकी इस मांग को पूरा भी किया। याद करें भजन संहिता 106 उसके 15 पद में, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, लेकिन उनके प्राण को सुखा दिया। यह बात उनके लिए मरुस्थल की यात्रा के दौरान कहे गए थे, परंतु यह वाक्य उन पर सदैव ही ठीक साबित होता है। यदि परमेश्वर उन सब की उन प्रार्थनाओं का जवाब दें, तो यह अपने आप में बहुत भारी गलती होगी। परमेश्वर बहुत ही अनुग्रहकारी है और बहुत सी बार वह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने से इनकार कर देता है। वह मेरे लिए इन सारे कामों को करता है और मैं विश्वास करता हूं कि वह आपके लिए भी काम करेगा। मेरे मित्र, इसके बावजूद भी परमेश्वर ने राजा के संदर्भ में उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया, बल्कि उनके मांगने से बहुत पहले ही परमेश्वर उनके मन में राजा के प्रति अपने नियम को डाल रहा था। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यदि तेरे बस्तियों के भीतर कोई झगड़े की बात हो, अर्थात आपस के खून व विवाद व मारपीट का कोई मुकदमा उठे और उसका न्याय करना तेरे लिए कठिन जान पड़े, तो उस स्थान को जाकर जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि दो लोग किसी महत्वपूर्ण विषय पर सहमत न हो, तो वह किस प्रकार से हल किया जाएगा। जब प्रमाण दोनों की तरफ के समान रूप में प्रभावित करने वाले नजर आते हैं, तब हम आगे पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 17 अध्याय उसके 9 से 11 पद में लिखा है, लेवीय याचकों के पास और उन दिनों के न्यायियों के पास जाकर पूछपाछ करना कि वे तुमको न्याय की बातें बतलाएं, और न्याय की जैसी बात उस स्थान के लोग जो यहोवा चुन लेगा तुझे बता दें, उसी के अनुसार करना, और जो व्यवस्था वे तुझे दें उसी के अनुसार चलने में चौकसी करना। व्यवस्था की जो बात वे तुझे बताएं और न्याय की जो बात वे तुझसे कहें उसी के अनुसार करना, और जो बात वे तुझको बताएं उससे दाहिने व बाएं न मुड़ना। मित्रों, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि व्यवस्था में सारी परिस्थितियों को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए जितनी भी असहमति थी उन्हें याजक के पास में पहुंचाया जाना था, और जो कुछ निर्णय याजक उनके लिए ठहराते थे उसे उन्हें मानना पड़ता था। याजक के द्वारा निर्णय की अवहेलना करने पर मृत्युदंड का प्रावधान था। मेरे मित्र, केवल एक ही स्थान पर हम पाते हैं जहां पर इस तरीके का इस्तेमाल किया गया है, हगै नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 11 पद में। मैं विश्वास करता हूं कि इस प्रकार की बहुत सी घटनाएं रही होंगी। यदि व्यवस्था में उन परिस्थितियों के बारे में जिक्र किया जाता अर्थात दिया जाता और उन विषयों पर कुछ कानून दिए होते, तो स्वाभाविक रूप में उस मामले में याजक के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी यदि कोई मामला या कोई ऐसी बात याजक या फिर न्यायी के पास ले जाया जाता, तो उनके द्वारा दिए गए निर्णयों को मानना ही पड़ता था। अब हम आगे देखते हैं कि राजा के संदर्भ में कुछ नियम या व्यवस्था। परमेश्वर जानता था कि वह समय आएगा जब वे राजा की मांग करेंगे। जिस प्रकार से दूसरे देशों के पास राजा हैं, परमेश्वर ने उनसे कहा कि उनका राजा इसराइलियों में से हो, किसी दूसरी जाति या देश में से न हो। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ते हैं, और वह बहुत घोड़े न रखे और न इस मनसा से अपनी प्रजा के लोगों को मिस्र में भेजे कि उसके पास बहुत से घोड़े हो जाएं, क्योंकि यहोवा ने तुमसे कहा है कि तुम उस मार्ग से फिर कभी न लौटना, और वह बहुत स्त्रियां भी न रखे, ऐसा न हो कि उसका मन यहोवा की ओर से पलट जाए और न वह अपना सोना रूपा बहुत बढ़ाए। मेरे मित्रों, यहाँ पर कुछ नियम राजाओं से संबंधित दिए गए हैं। यह बहुत ही रुचिदायक बात है कि राजा सुलेमान ने इन नियमों का उल्लंघन किया। सबसे पहले तो उसने घोड़ों को बढ़ाया। सुलेमान की घुड़सालाएं जो इस देश से रेस ट्रैक पर बने हैं, किसी किसान के खेत के समान दिखते थे, और अन्य कुछ और घुड़शालाएं उस शहर के और अन्य स्थानों में बनाए गए थे। यह व्यक्ति सुलेमान इन सारी ही दिशाओं में बाहर भागता रहा। परमेश्वर ने उसे इसके विरोध में चेतावनी भी दी। घोड़ों की संख्या बढ़ाने का यह सिलसिला उसे मिस्र के साथ जोड़ने जा रहा था, क्योंकि नई नई नस्लों की घोड़ों को पैदा करने का काम वहां से ही किया जाता था। मेरे मित्रों, इसके बाद सुलेमान ने बहुत सी पत्नियों को ब्याह लिया, और ऐसा करने से उसने अपराध किया। इसराइल में राजा होने से बहुत वर्षों पहले ही परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी के रूप में चिन्ह दिए थे कि सावधान रहना, इस तरह के काम न करना। फिर भी सुलेमान ने बहुत सी पत्नियों से विवाह किया, और ये उसकी पत्नियां ही थी जिसने सुलेमान के मन में परमेश्वर से दूर होने की बात को डाली। तीसरी बात यह है कि परमेश्वर ने सोना या चांदी के भंडार बनाने के लिए भी मना किया, लेकिन ठीक वही काम सुलेमान ने किए। इस काम को दाऊद ने शुरू किया था, परंतु वह परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए कर रहा था। अतः इन बातों के द्वारा सुलेमान ने परमेश्वर की बातों का उल्लंघन किया, और सबसे दुखद बात तो यह है कि उसने कर का भुगतान किया, जिसकी वजह से इसराइल देश सुलेमान की मृत्यु के पश्चात उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में विभाजित हो गया, अर्थात एक देश दो हिस्सों में बट गया, उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में। हम आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय उसके 18 से 20 पद में, यहाँ पर लिखा हुआ है, और जब राजगद्दी पर विराजमान हो तब इसी व्यवस्था की पुस्तक जो लेवीय याजकों के पास रहेगी उसकी एक नकल अपने लिए कर ले, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इन विधियों की सारी बातों को मानने में चौकसी करना सीखे, जिससे वह अपने मन में घमंड करके अपने भाइयों को तुच्छ ना जाने और इन आज्ञाओं से न तो दाहिने मुड़े और न बाएं, जिससे कि वह और उसके वंश के लोग इसराइलियों के मध्य बहुत दिनों तक राज्य करते रहें। मेरे मित्रों, राजा को परमेश्वर के वचनों पर चलने वाला व्यक्ति होना था। उसके पास व्यवस्था की एक व्यक्तिगत लिपि होना आवश्यक था, और उसे उसको प्रतिदिन अपने जीवन में पढ़ना था। शायद सुलेमान ने ऐसा नहीं किया, और यही कारण था कि वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 17 समाप्त होता है, और अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 18 से अपने अध्ययन को जारी रखते हैं। इस अध्याय का विषय है याजक और भविष्यवक्ता, सच्चे भविष्यवक्ता की परीक्षा। मेरे मित्रों, परमेश्वर याजकों को बनाए रखने के लिए नियम प्रदान करता है। इसके बाद में एक और चेतावनी आती है जो मूर्ति पूजा के विरोध में है, जो शैतानिक शक्तियों को सहारा लेती है, जो व्यवस्था विवरण के एक अद्भुत खंड से जुड़े अध्याय के तुरंत बाद आता है। यह अध्याय हमें भविष्यवक्ताओं के बारे में बताता है, और इसमें आने वाले सर्वोच्च भविष्यवक्ता के अर्थात यीशु मसीह जो आने वाला है उसके बारे हमें बताता है। आइए हम देखते हैं याजकों की देखभाल। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, लेवीय याजकों का वरन सारे लेवीय गोत्रियों का इसराइलियों के संग कोई भाग व अंश न हो, उनका भोजन हव्य और यहोवा का दिया हुआ भाग हो, उनका अपने भाइयों के बीच कोई भाग न हो, क्योंकि क्योंकि अपने वचन के अनुसार यहोवा उनका निज भाग ठहरा है। मेरे मित्रों, याजक लेवी के गोत्र से होते थे और सारे ही लेवी मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त किए जाते थे। उनके पास संपत्ति के नाम पर भूमि का कोई भी टुकड़ा नहीं था। परमेश्वर ही उनकी संपत्ति है। परमेश्वर उनके लिए बहुत ही अनोखे ढंग से इंतजाम किया करता था। यह बहुत ही रुचिदायक और मजेदार बात है कि परमेश्वर ने यह कभी नहीं बताया कि एक राजा को उसका वेतन किस प्रकार से मिलेगा, परंतु उसने यह जरूर बताया कि एक याजक को उसका मेहनताना अर्थात उसकी मजदूरी किस प्रकार से मिलेगी। फिर भी एक पाशवान या पादरी की सैलरी या तनख्वाह आज भी कलीसिया में एक संवेदनशील मुद्दा या विषय बना हुआ है। परमेश्वर ने इसे एक पंक्ति में कह दिया। उसने कहा, याजक को प्राप्त होना चाहिए, अर्थात उसका जो देन है उसे मिलना ही चाहिए। आइए हम पढ़ें व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसके 3-5 पद में लिखा है, और चाहे गाय बैल चाहे भेड़ बकरी का मेल बलि हो, उसके करने वाले लोगों की ओर से याजकों का हक यह है कि वे उसका कंधा और दोनों गाल और झोंझ याजक को दें। तू उसको अपनी पहली उपज का अन्न, नया दाखमधु और टटका तेल और अपनी भेड़ों का वह ऊन देना जो पहली बार कतरा गया हो, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे सब गोत्रियों में से उसी को चुन लिया कि वह और उसके वंश सदा उसके नाम से सेवा टहल करने को उपस्थित हुआ करें। मेरे मित्र, यह एक बहुत ही महान सिद्धांत है जो कि परमेश्वर यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। यह तरीका आज भी विद्यमान है जिसके द्वारा परमेश्वर दुनिया में अपने कार्य को अंजाम देता है। वह चाहता है कि उसके लोग उन लोगों के लिए अपने सहयोग को दें जो अपना सारा जीवन दुनिया भर में परमेश्वर के वचन को बांटने में लगा देते हैं। यदि लोग उस समय पर याजकों के लिए बैल और मेमने के कंधे का हिस्सा लाते थे, तो हो सकता है कि हमारे लिए भी उचित है कि प्रभु के दासों के लिए हम कुछ दान लाएं। मेरे मित्रों, मैं नहीं सोचता कि परमेश्वर आज भी उसी तरीके से अपने सहयोग को लाने के लिए हमसे कह रहे हैं, लेकिन सिद्धांत आज भी वैसा ही है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आत्माओं के साथ खिलवाड़ करने में पाबंदी। हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 9-12 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौना काम करने को न सीखना। तुझ में कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे व बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला वा भावी कहने वाला वा शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला वा टोनहा वा तांत्रिक वा बाजीगर वा ओझों से पूछने वाला वा भूत साधने वाला वा भूतों को जगाने वाला हो, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सम्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। मेरे मित्रों, जब वे लोग उस स्थान में पहुंचेंगे तो उस देश के अन्य जातियों के समान उन्हें मूर्ति पूजा और भूत सिद्धि नहीं करना था, अर्थात उनमें शामिल नहीं होना था। यह चेतावनी नए नियम में भी दोहराई गई है। पौलुस चेतावनी देता है जिसे हम पहला तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, परंतु आत्मा कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे अर्थात बहक जाएंगे। वे इस अनदेखे सैतानिक संसार में मगन हो जाएंगे। अब मैं अपने विचारों को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ, और जो कुछ इसमें से आपको फायदेमंद लगे या अच्छा लगे उसे आप अपने लिए अपना सकते हैं। मैं यह विश्वास करता हूँ कि हम उस समय में आ गए हैं जब मैं इन बातों को लिख रहा हूँ। शैतान की आराधना बहुतायत से प्रकट हो रही है। दक्षिण कैलिफोर्निया में शैतान के बहुत से कलीसियाएं हैं जहाँ पर उसकी आराधना की जाती है। बहुत से लोग इसे आरम्भ तो कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे निर्दोष लोग जो अनपढ़ हैं इसमें फंस जाते हैं और उनका बुरा हाल हो जाता है। मेरे मित्रों, इस बात में अवश्य ही सच्चाई होगी, क्योंकि शैतान प्रत्यक्ष है, और मैं विश्वास करता हूँ कि इन बातों में कुछ हद तक सच्चाई अवश्य पाई जाती है, क्योंकि शैतान अपने आप में प्रत्यक्ष सच्चाई है, परंतु परमेश्वर हमें उसके विरुद्ध चेतावनी देते हैं। वह यह कहते हैं कि ऐसा करना परमेश्वर की निंदा करना है। मेरे मित्र, मैं इस बात को इसमें इसलिए जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आज इस बात को किसी न किसी को बोलना ही है। याद रखें कि पिछले अध्यायों में चांद, सितारों, सूर्य की पूजा या आराधना करने की निंदा की गई है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाइबल पर अपना ध्यान देने के बजाय चांद, सितारों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे मित्रों, नक्षत्र ज्ञान परमेश्वर की निंदा करना है। यह उनको अंधकार में डुबो देता है और खत्म कर देता है। दुष्ट आत्माओं के संसार में सच्चाई है। ये पतित स्वर्गदूत और आत्माओं का संसार है। मेरे मित्रों, हम इस बात पर ध्यान दें कि एक परमेश्वर के जन को इन बातों से अलग रहना चाहिए, और यदि कोई भी जन इस दिशा में फिरता है तो वह विश्वास में कमजोर है और सच में मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास नहीं करता। परमेश्वर इस प्रकार की बातों के लिए अपने वचन में हमें चेतावनी देता है। भूतकाल में उसकी चेतावनी बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हुआ करती थी और वह आज भी महत्वपूर्ण है। आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 13 और 14 पद को पढ़ें। लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। वे जातियां जिनका अधिकारी तू होने पर है, शुभ अशुभ मुहूर्तों के मानने वालों और भावी कहने वालों की सुना करती है, परंतु तुझको तेरे परमेश्वर यहोवा ने ऐसा करने नहीं दिया। मेरे मित्रों, इन देशों को इन नियमों के आधार पर न्याय किया जाता था और इनके आधार पर वे नाश भी कर दिए जाते थे। इसराइल को सच्चे और जीवते परमेश्वर का गवाह होने के लिए बुलाया गया था, न कि उन विधियों को जिसे परमेश्वर नहीं चाहता है अपने जीवन में लाने के लिए। मेरे मित्रों, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है और आप परमेश्वर के उन बातों को स्मरण रखेंगे जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाले। रूह के मसा से भर दे मसीहा, लौटे न कोई भी खाली। आंखें भरी और लब है लरजते, आए हैं बन के सवाली।
मसीह